परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् हरिया जयमलदास गुरु राम निरंजन देव काया देवल देहरो सहज हमारी से स्वर्गाश्रम जेठ सुधी नवमी संवत 1992 जीवन सफल नहीं किया तो जीवन व्यर्थ निकल गया ये शीर्षक है। भगवान कहते हैं सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च सब कार्य करो पर मेरा निरंतर स्मरण करते हुए करो, चित्त को मुझमें रखते हुए युद्ध करो। जहां पर चित्त वृत्ति लगी हो वहां लगी रहे। मनुष्य का लक्ष्य भगवान को पाना ये रहना चाहिए। भगवान को पाने का स्मरण रखते हुए, भगवान का स्मरण करते हुए सब कार्य करो। कहीं शास्त्रार्थ में यह, कहीं शास्त्रार्थ में या और किसी में फंस गया तो पतन है। शास्त्र आओ मैं ज्यादा जानता हूं, करो शास्त्र फंस जाओगे। मनुष्य यदि शास्त्रार्थ में फंस गया, क्योंकि शास्त्रार्थ में अहंकार ही बढ़ता है, मैं ज्यादा जानता हूं तुम नहीं जानते, तो वो भगवान को भूल गया, अहंकार को पकड़ लिया तो डूबेगा। अतः भगवान को मत भूलो, बड़ा अमूल्य जीवन है, जीवन यूं ही मत बीतने दो। संतों का संग करो, सत्संग करो, अच्छी अच्छी बातों का हृदय में पालन करो। भगवत कृपा से मौका मिलता है, बार बार नहीं मिलता। इस जन्म को सफल करने का सर्वोत्तम साधन केवल भगवान का चिंतन है, और कोई काम हो या न हो ये काम हमारा मुख्य है। इस मुख्य काम को कभी भूलो मत। क्या बताया, इससे बढ़कर क्या बात होगी। एक विद्वान नाव पर जा रहे थे, नाव वाले से पूछा नक्षत्र विद्या जानते हो, उसने कहा महाराज मैं तो नहीं जानता, तुम्हारा एक जीवन व्यर्थ चला गया, तुम वनस्पति विज्ञान जानते हो, किस वृक्ष के पत्तों में क्या गुण है, त्वचा में क्या, छाल में क्या गुण है। कि महाराज मैं तो नहीं जानता, जीवन तुम्हारा व्यर्थ गया। फिर कहा कि गणित जानते हो, जोड़ बाकी गुणा भाग ये गणित जानते हो? का महाराज वो भी नहीं जानता। तुम्हारा 3 जन्म व्यर्थ चला गया। तूफान आया, नैया डूबने लगी। अब नाव वाले ने पूछा, पिंडित जी तैरना आता है या नहीं? तो पंडित जी ने कहा कि नहीं आता। तो मेरा तो जाने कितना समय व्यर्थ गया, आपका तो ये जीवन व्यर्थ गया। मतलब सारी विद्याओं का सार यही है, भगवान में लगना। बाहर बाहर की बातों को जानकर विद्वान बन गए और उस विद्वत्ता को ढोए फिरते हो और नाव में बैठे हो, तैरना आता नहीं। ऐसे ही मानव शरीर प्राप्त किया, खूब धनादि प्राप्त किया, लेकिन यहां से पार होने का उपाय नहीं जुटाया तो डूबोगे और क्या होगा। अपने जीवन का असली उद्देश्य भगवत प्राप्ति है। उसको यदि प्राप्त नहीं किया तो सारी पंडिताई कुछ काम नहीं आएगी। इधर तो जो तैरना जानता है वही संसार सागर से पार हो सकता है। हमारा जीवन अगर भगवान की ओर हो जाए तब तो ठीक है। यदि जीवन को सफल करने की सामग्री प्राप्त नहीं की, सारा जीवन व्यर्थ चला गया। जीवन का प्रत्येक पल भगवत चिंतन में बीते हैं। जो समय भगवत चिंतन की विस्मृति में बीत गया, बड़ी आफत आपने बुला ली। यह समझो कि आपने विपत्ति का पहाड़ अपने पर पटक लिया। काम हो तो अच्छा, न हो तो नहीं सही। संसार के काम हो जाए तो अच्छा, नहीं हो तो नहीं सही। भगवान का काम हो जाए तो अच्छा और भगवत प्राप्ति नहीं हो तो नहीं सही, ये नहीं चलता है। ये तो केवल संसार के काम में चलता है, क्योंकि भगवत प्राप्ति के बिना नहीं सही होता नहीं है, वो तो गलत है। एक क्षण भी बिना भगवान के बीतता है वह महापाप का बीतता है। भगवान का नित्य चिंतन, भगवान की आज्ञा का अनुसरण, भगवान के गुणानुवाद का आश्रय, ये जीवन का अवलंबन हो जाना चाहिए। भगवान के गुण सुनने को मिले, भगवान का प्रभाव सुनने को मिले, भगवान की लीला मिले, सत्संग मिले तो ठीक है, और नहीं मिले तो बेचैन रहो। इस प्रकार की स्थिति हम लोगों की होनी चाहिए। क्यों नहीं होती? हम आडंबरों में घिर गए। उन आडंबरों से हम लोग सुखी होते हैं। उन आडंबरों को छोड़ने की हमको फुर्सत ही नहीं मिलती। ये ऊपर ऊपर की बातों से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई कर ली, विद्वान बन गए, लोगों को समझा दिया, बोल दिए, उपदेश दे दिया, इससे पार नहीं पड़ेगी। ये सहायक तो कब होंगी? जब आप अपना रास्ता भगवत प्राप्ति का पकड़ोगे। शास्त्रार्थ नहीं कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। धन आदि नहीं प्राप्त कर सकते, कोई आपत्ति नहीं। शरीर आपका स्वस्थ नहीं रहता, कोई दिक्कत नहीं। घर में आपका कोई प्रिय से प्रिय व्यक्ति चल बसा, कोई आपत्ति नहीं। लोगों ने झूठे झूठे हम पर लांछन लगा दिए, कोई आपत्ति नहीं। डरो मत, हिम्मत रख करके चलो। डरो तो एक बात से कि कहीं हमारा एक क्षण भी भगवान को भूलने में न चला जाए। भगवान भगवत चिंतन के बिना एक क्षण भी न बीते, इस बात में डरो। और भगवान से ही उनका बल मांगो, हे भगवान मुझे ऐसा बल दो कि आपको मैं भूलू नहीं। मैं बहुत कमजोर आदमी हूं, मैं बहुत लाचार हूं। मांगो भगवान से, भिखारी बनकर चरणों में पड़कर जितना मांगो, जितने दीन होकर के मांगोगे, रो करके मांगोगे, उतना ही भगवान का दरबार आपके लिए खुलता जाएगा। उनके बल पर भरोसा करो, सारे काम ठीक हो जाएंगे। भगवान की कृपा पर विश्वास करो, भगवान की कृपा सारे कामों को संपन्न कर देगी। छोटे बालक की तरह बन जाओ और भगवान को अपनी मां मानो। मां ही एकमात्र छोटे बालक का अवलंबन है। मां जैसे छोटे बालक को अपनी गोद में लेने पर बहुत प्रसन्न होती है, ऐसे भगवान अपने रोने वाले भगत से बड़े खुश होते हैं जो उनकी गोद में जाता है। ऐसी अवस्था हमारी हो जाए, भगवान मां के सामने हम बालक हो जाए, फिर भगवान अपने आप संभाल लेंगे। इसलिए विद्वान मत बनो, बालक की तरह भोले भाले बनो। भोले भाले को भगवान बहुत चाहते हैं, उस भगवान की दया पर निर्भर हो जाओ। भगवान की मूर्ति क्या है? कृपामयी है। भगवान के मंदिर में जाओ, उनकी मूर्ति को देखो, तो उसमें ये देखो कि इसमें छिपी हुई कृपा मुझे लेनी है। पहली बार सुना होगा, भगवान के दर्शन मंदिर में करो। भगवान की जो मूर्ति है, उस मूर्ति में क्या है, उसमें भगवान की कृपा को ढूंढो। वो कृपामयी मूर्ति है, वो धातु की है, वो पत्थर की है, वो तांबे की है कि सोने की है, ये तो सभी देखते हैं। जो भगवान का होकर भगवान की मूर्ति को देखता है, वो उसमें कृपा को देखता है। दया का ही एक मूर्त रूप हमारे सामने आया है। बच्चे को जैसे मां मिले, स्नेहमयी मां, बच्चा जाकर दौड़कर उस मां के लिपट करके रोता है, ऐसे भगवान के दर्शन करते ही मां के अंदर जैसे प्रेम को देखकर रोता है, ऐसे उनकी दया, उनकी कृपा उसको लेकर रो। मां कहती है, आजा बेटा मेरी गोद में आ जा, फिर भी हम रह जाए, गोद में न जाए तो बड़े अभागे हैं। भगवान को अपना अवलंबन बना लो, फिर देखो तो सही, इतनी बात पर विश्वास तो करो, भगवान पर करो, इन बातों पर विश्वास करो, कितना जल्दी जीवन बदलता है। भगवान कोई मामूली है, जिनके संकल्प से सारी सृष्टि नहीं अनंत सृष्टि क्षण भर में बनती है और दूसरी क्षण में लय हो जाती है, वो भगवान सर्वशक्तिमान भगवान हमें गोद में ले रहे हैं। ना ना ले नहीं रहे कि गोद में मुझे ले लिया है, मैं तो उनकी गोद में बैठा हूं, मुझे भगवान क्यों छोड़ेंगे। ऐसा अवलंबन लेकर, भगवान का अवलंबन लेकर पूर्ण दृढ़ता से भगवान को अपने पास, अपने पास नहीं, अपने को भगवान की गोद में ही देखो। विभीषण आया भगवान के पास, सुग्रीव ने कहा महाराज ये राक्षस क्यों आया है मालूम है कि नहीं। भगवान ने कहा भाई मालूम नहीं, बांध लो, ये भेद लेने आया है। भगवान ने कहा ऐसा तो मेरा स्वभाव रहा नहीं सुग्रीव, कोई मेरी, देखो सेठ जी का एक नया भाव, कोई मेरी शरण में आए, मेरे पास आए और मैं उसमें कमी देखूं, ऐसा मेरा स्वभाव ही नहीं। मैं बांधूं मेरे पास आने वाले को दंड देऊं, इसके कोई अवगुण अभी तो दिखे नहीं, अवगुणों की कल्पना करूं, ये मेरा स्वभाव नहीं है। इसलिए मैं लाचार हूं। सखा नीति तुम नीक बिचारी, परंतु मम प्रण शरणागत भयहारी। मैंने सुग्रीव अभी सुना नहीं है, सॉरी मैंने अभी विभीषण को देखा नहीं है और शरण में अभी आया ही नहीं है, सुन रहा हूं कि वो शरण में आ रहा है। मेरे मन में इतनी बात भी आ जाती है तो उसको दंड देने का, उस पर संदेह करने का मेरे स्वभाव नहीं है। यदि विभीषण के मन में ऐसा होता, सेठ जी बोल रहे हैं, यदि विभीषण के मन में ऐसा होता तो भी भगवान नहीं देखते, उसके अंदर दोष नहीं देखते, स्वभाव नहीं है भगवान। कारण ध्यान से, भगवान स्वयं विशुद्ध है इसलिए वे कभी किसी की अशुद्धि को पकड़ते ही नहीं है। इस प्रकार की भगवान की निर्भरता को छोड़कर हम लोग और दूसरी जगह भटके, ये तो हमारी कुटिलता है, अविश्वास है। तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात भवामी नचिरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। नचिरात तत्काल, जब भगवान स्वयं धक्का देकर हमको पार कराने में तत्पर है, क्या देरी लगेगी। भगवान हनुमान जी कहते हैं कि मैं तो अपने बंदरों में सबसे छोटा बंदर हूं, वह भी मिनटों में लाग में आऊं। फिर भगवान का तो कहना ही क्या है, जिनके शंख छूने मात्र से ज्ञान होता है उस भगवान को छोड़कर दूसरी जगह भटकना हमारी कितनी मूर्खता है। एक एक वाक्य कितना विलक्षण है सेठ जी का। जेठ सुदी दशम, दोपहर का सत्संग, वटवृक्ष। वटवृक्ष में ज्यादा सेठ जी सत्संग कराते थे। एक बार पूर्ण घटाटोप हो गया और बरसात तेज बरस सकती है ऐसी उम्मीद थी, तो स्वामी जी महाराज ने हरिप्रसाद जी से पूछा कि पंडित जी सेठ जी से पूछो आज सत्संग कहां करें, वटवृक्ष के नीचे करें या कहां करें, आपकी जहां आज्ञा हो वहां करें। तो हरिप्रसाद जी ने पूछा, सेठ जी ने कहा, थोड़ी देर तो छांटा आई, बाद में आसमान साफ हो जाए, वटवृक्ष के नीचे चलो। इसलिए दोपहर में भी वटवृक्ष को, गर्मी भी पड़े चाहे कुछ भी हो, अस्त। परमात्मा की प्राप्ति में झूठ कपट छल हिंसा आदि का त्याग तो बहुत ही जरूरी है। अब देखो सेठ जी की मारवाड़ी भाषा, उरे वर्षा आंधी भोग्या के लिए दुख रूप है और वैराग्या के लिए सुख रूप है, यह बात एकदम प्रत्यक्ष है। स्वाभाविक यह भावना कर कि यह हवा वैराग्य को उपदेश कर रही है तो वैराग्य ही बरस रियो है। विचार करो, ऋषि मुनि लोग जब वन में रहकर भगवान को भजन करता तो उना पर धूल फिर जाती, धूल पड़ी रहती। आपने नहीं सुनी होगी वो बात बोल रहे, कल्पना नहीं कर सकते ऐसी बात। क्या च्यवन ऋषि पर धूल बरस बरस कर इतनी जमगी कि ब्यारे शरीर पर जो धूल जमी बीरमाए ने पौधा खड़ा हो गया। सुनी कभी? पौधा खड़ा हो गया शरीर पर धूल जमी, कीड़ियां घूमती चढ़ती। उस अवस्था में भी उना के आनंद को पार नहीं। जो बैरागी पुरुष हुए वो भोगिया के आराम को देख करके घबरा जावे, रुक नहीं सके। जैसे हम लोग कसाई की दुकान में देखा और कन्ने बिने देख करके, बट कोई किया कसाई मांस काटे तो देखने की इच्छा नहीं हो, भागे रुके कोनी। अइया ही विरक्त पुरुष भोग्या कने आराम देकर भागे, रुक नहीं सके। विरक्त पुरुषा ने महला में ठहराओ, ठहर नहीं सके। वहां उना को ठहरनो इतनो कठिन है जैसे आपने लोगों ताई दुर्गंध के स्थान में रहना कठिन है। उनके भोग्य स्थानों में एक प्रकार की मन की वृत्तियों के द्वारा दुर्गंध के माफिक भावना बनती है जिससे वहां नहीं रुकते। देखो वो जो दुर्गंध उनको आती है भोगियों के भोग में बैरागियों को, वो नाक से दुर्गंध नहीं आती, वो मन की वृत्तियों से दुर्गंध आती है। उनके मन की वृत्ति है, वो वृत्ति उनको कैच नहीं करती, दुर्गंध आती है, नाक वाली नहीं है ये। उनके भोग्य योग स्थानों में एक प्रकार की मन की वृत्तियों के द्वारा दुर्गंध के माफिक भाव होते हैं जिससे वहां वे रह नहीं सकते। वैराग्य में धूल ओड़ा ये बरसते हैं तो फिर उसके आनंद का वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। पिपासा वाला जल पाकर जैसे मुग्ध होता है, ऐसे ही वो पुरुष यहां की वर्षा आंधी से मुग्ध हो जाता है। जिनमें वैराग्य उत्पन्न होता है उनको भूमि का शयन उनको आनंद देता है, टाट पर पड़ा रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। वह आनंद एक भोगी को फूल के सहज पर भी अच्छा नहीं लगता। वह आनंद आत्मबुद्धि प्रसादजम आनंद है। वैराग्य से जो आनंद आता है आत्मबुद्धि प्रसादजम है। जैसे प्रेमी से प्रसन्नता रोमांच होते हैं ऐसे वैराग्य में होता है। भोगी इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। ज्ञान के मार्ग में दो बात की आवश्यकता है, एक समझ की और देहाभिमान के त्याग की। भक्ति में तो प्रेम की जरूरत है, दो की जरूरत नहीं है। स्त्री का रुपयों का मान बढ़ाए का त्याग न हो सके, इससे मालूम पड़े है कि अभी देह में अभिमान छूट्यो नहीं है। देह में अभिमान रहने से मान बढ़ाई रुपया स्त्री अच्छा लगे। कर्मयोग में भी कठिनता है, कठिनता में पढ़कर भी यदि आत्म कल्याण हो जावे तो के हर्जो है। थोड़ी कठिनता उठा लो वो काम क्यों नहीं करना चाहे, जरूर करना चाहे। कठिनता है तो है, ध्यान देने की बात है। जब तक आचरणा में झूठ है, कपट है, छल है, हिंसा है, दोष है, तब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होवेली, नहीं हो सकेगी, क्योंकि ये परमात्मा की प्राप्ति में भयंकर बाधा है। चाहे किसी भी मार्ग से चलो, कोई यह समझे कि परमात्मा की प्राप्ति तो भोगों के रहते हुए भी हो सके है, या आशा एकदम छोड़ देनी चाहिए। भगवान मेरे से सलाह लेवे कि लोगों को कल्याण क्यों करके होनो चाहे के कहूं, तो मैं तो भगवान ने यही कहूं कि पहली झूठ कपट आदि को छोड़ने की शर्त लगाओ। भगवान की यदि मंशा हुए कि झूठ कपट करके भी इरो कल्याण करा, तो भी मैं तो वही निवेदन करूं कि भगवान आपकी दया ने समझेगा नहीं और दुनिया में झूठ कपट आप रे सारे सु बढ़ावे, तो आप झूठ कपट रो कल्याण, झूठ कपट करने वाले रो कल्याण मत करो। आपा इतनी बातें सुना, क्यों नहीं इना को त्याग होवे? भाई हनुमान प्रसाद ने छोड़ करके मेरो कहनो है, चोरी झूठ व्यभिचार हिंसा आदि जिसमें है वो यदि भगवान से मिलने की इच्छा करे तो माने हंसी आवे कि देखो ऐसो आदमी भगवान की प्राप्ति करनो चाहे। संसार में कोई आदमी मूर्ख ने देखनो चाहे तो ऐसे आदमी ने देख करके समझनो चाहे कि कैसो मूर्ख है। किसी भी मार्ग में थे चालो, यो दोस्तों थाने त्यागनो ही पड़ेगो। इरो त्याग करनो बहुत जरूरी है। थे किता भटक रिया हो, रुपया रे वास्ते झूठ बोलो, कठे रुपया कठे थे कठे सत्संगरी बातां बीर वास्ते झूठ बोलो, दूसरा के धन हड़पने की इच्छा करो, दूसरे की स्त्री ने हृदय में बैठाओ, कितनो बिल्कुल नीचो मार्ग है, इन्हें बिल्कुल त्याग देनो चाहिए। कंचन कामनी को जो त्याग है, गृहस्थ आश्रम में स्वरूप से तो नहीं त्यागी जावे, परंतु उसमें जो भोग बुद्धि है उसको त्याग करके रहो, कितनो ऊंचो त्याग है। स्त्री के साथ रहते हुए भी स्त्री को प्रभाव नहीं पड़े, सुनने में कठिनता लागे, परंतु भोग बुद्धि निकलने के बाद बड़ी सुगम हो जावे। गृहस्थी के इतो ही उचित है कि जानबूझकर किसी ने नहीं सताणो। राजा के द्वारा वैसो दंड दियो जावे, राजा के द्वारा कमली वैसे दंड दियो जावे। अक्षर इसको त्याग करनो चाहे। अपने स्वार्थ के वास्ते दूसरा ने कष्ट पहुंचाओ आ राक्षस वृत्ति है। पण अपनो स्वार्थ भी नहीं है, फिर भी दूसरा ने कष्ट दियो जावे, उसके लिए हमारे पास कोई शब्द नहीं है, इतनो नीचो है, राक्षस भी नीचो है। मैं थाने जीता हुआ देखूं कि चार पांच आदमी तो निष्काम काम कर रहा है, मन दिखे नहीं। चार पांच आदमी ने निष्काम का निष्काम कर्म करते देख लूं, महाराज जीते जी तो संतोष हुए। पहले झूठ कपट को त्याग, फिर सारी क्रिया स्वार्थ रहित तो होवे और दूसरों को हित होवे, निरंतर भगवान को याद रखे तो कितनी ऊंची बात है। आप लोगों ने यह ऊंचाई समझ में क्यों नहीं आ रही है, इरो बेरो पट्यो नहीं है। पदी दूज समत 1993 छोटा छोटा लिखा पहले निकाल दू, बड़ा लिख एक साथ रह जाए। प्रेम का विषय बहुत उत्तम है, परंतु मैं मेरी तरफ देखता हूं तो प्रेम के विषय में कहने का साहस नहीं होता है। ये तो आप हम सभी समझ सकते हैं कि जहां प्रेम है वहां आनंद है। प्रेम का दर्शन सुंदरदास जी ने कैसा सुंदर कराया है, न लाज ती न लोक की न वेद को कहो करे, न शंक भूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे, सुने न कान और की धसे न और इच्छना, कहो न मुख और बात भक्ति है प्रेम लक्षणा। ऐसा प्रेम होता है तब लाज तीन लोकों की भी नहीं रहती, वह तीनों लोकों को तो छोड़ता नहीं परंतु वह प्रेम में लाज रहती नहीं है। प्रेम में भरत जी की कैसी दशा हुई, प्रेम में उद्धव जी की कैसी दशा हुई, रामचंद्र जी वन से लौटकर आए और भरत से मिले, उस समय में सुग्रीव और विभीषण दोनों एक दूसरे को देख करके खूब रोने लगे, बोले कि ओ विभीषण ओ सुग्रीव, भाई तो हमारे भी थे लेकिन प्रेम नहीं था, प्रेम के बिना ये भाई का संबंध क्या काम आया। भरत और राम को देखो, भाई ये है पर इनके बीच में प्रेम है। एक मनुष्य का राजा के साथ प्रेम होवे तो वो बड़ो आनंद में डूब जावे, वो अपने में समावे नहीं। और यदि इंद्र से प्रेम हो जाए तो कितनो आनंद होवे उसका अंदाज नहीं लगा सकते। इन लोगों से प्रेम होना तो अपने अख्तियार की बात नहीं है, अख्तियार माने हाथ की बात नहीं है, पर परमेश्वर से प्रेम करना तो अपने अख्तियार की बात है। और सबसे बड़े आनंद की बात तो यह है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करने के लिए तैयार है, इंद्र हमसे प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, वो बड़ी खुशामदी चाहता है। राजा भी स्वयं अपने आप हम साधारण आदमियों से प्रेम करने के लिए तैयार नहीं है, वो भी अनेक स्तुतियों को प्रशंसाओं को सुनता है तब वो मिलने के लिए बोलता है। लेकिन परमेश्वर तो स्वयं प्रेम करने के लिए तैयार। ऐसे परम सुहृद साक्षात परमेश्वर के प्रेम को छोड़कर हम लोग विषय भोगों में फंसे रहे तो हम लोगों की नीचता की तो हद ही हो गई। भगवान तो पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदम भक्त्युपरितम मश्नामि प्रयतात्मने। अरे तुमसे मुझे कोई जरूरत नहीं है, तुम एक पत्ता प्रेम से देओ। अरे जल तो होगा तुम्हारे पास, पुष्प भी नहीं तो जल तो होगा, उसको भी बड़े प्रेम से मुझे देओ तो मैं प्रेम से उसको ग्रहण करता हूं। वहां पत्र पुष्प की जरूरत है न फल जल की जरूरत है, वहां प्रेम की जरूरत है। वो भी हम नहीं दे सकते। महात्मा और शास्त्र कह रहे हैं कि वह परमेश्वर अवतार भी लेता है, उनके हाथ से जो जीव मरते हैं उनका कल्याण होता है, उनके संहार में भी बड़ी दया है। परित्राणाय साधु नाम तो विनाशाय च दुष्कृताम। वो बैर भाव रख करके दुष्टों का विनाश थोड़ा ही करते हैं। भक्ति करके मिलने की इच्छा हो तो साधु होना चाहिए, पर याद रखना केवल कपड़े रंगने से साधु नहीं समझना। साधु के माफिक जिनकी क्रिया है वे ही साधु है। मैं कपड़े रंगने के लिए नहीं बोलता हूं, साधु होने के लिए बोलता हूं। कपड़ा बाहर रंगा जाता है, साधु भीतर से होता है। गीता में कहा है कि देवी संपत्ति के आश्रय में आप चले जाओ, देवी संपत्ति के आश्रय होकर मुझे भजने वाले ही साधु हैं। 16वीं अध्याय पहलो दूसरो तीसरा श्लोक, जिनमें ये लक्षण होते हैं वे साधु हैं। इससे भी बढ़कर परमात्मा के प्रकट होने का उपाय प्रेम है। शिवजी कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगट होई। मैं जाना, मैं जानता हूं हरि सब में व्यापक है और वे प्रेम से ही प्रकट होते हैं, दिया सड़ाई से जैसे आग प्रकट होती है। हरि विशेष रूप से कहां रहते हैं? हृदय में। उनके नाम और गुणों का संघर्षण करो, रगड़ लगाओ, उस रगड़ से भगवान प्रकट होते हैं। भगवान को सच्चे दिल से पुकारने पर भगवान जरूर आते हैं। जैसे मां बच्चे के रोने की आवाज पर सब काम छोड़कर आती है, वैसे ही सच्चे दिल से भगवान के लिए रोने पर भगवान के आने में विलंब नहीं होता। जब ये विश्वास हो जाता है कि भगवान है और वो मिलने के लिए तैयार है, तब फिर मनुष्य भगवान से मिले बिना नहीं रह सकता, कैसे जी सकता है। परंतु अपने मन में तो और ही बातें हैं, हम तो इतने पाप किए हुए हैं, अब कैसे भगवान हमको मिलेंगे, विश्वास ही नहीं करते। विश्वास होने पर उससे पाप, नए पाप तो हो ही नहीं सकते। हम लोग भगवान को धोखा भी नहीं दे सकते हैं। ऊपर से तो हम ऐसा करें, अंदर से हम पाप को बढ़ावा देवे, ऐसा भगवान धोखा खाने वाले नहीं है, सब जगह मौजूद है। भगवान के सब अंग सब जगह है, सर्वतः पाणि पादं तत्। भगवान कहते हैं मैं तो मेरे भक्तों का दिया हुआ ही खाता हूं। जब तक मनुष्य से पाप होता है तब तक वह प्रभु के रहस्य को जानता नहीं है। हम लोगों को भगवान में प्रेम बढ़ाना चाहिए। स्वार्थ मीत सकल जग माही, सपने ओ प्रभु परमार्थ नाई। सुर नर मुनि सबकी ये रीति, स्वार्थ लाग करई सब प्रीति। परंतु हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। बिना प्रयोजन के प्रेम करने वाले आप दो ही हो, एक तो आप और एक आपके सेवक। दूसरे मनुष्य का उपकार करने से ही प्रेम होता है, इसलिए यह उपकार शब्द दिया है। हेतु रहित जग जुग उपकारी। सारी दुनिया को नारायण समझकर उपकार करना, ये भगवान से प्रेम करने का उपाय है। किसी को तकलीफ पहुंचाना भगवान को तकलीफ पहुंचाना है। सारी दुनिया की सेवा करे, ये भगवान से प्रेम करने का उपाय है। भाई लोग कहते हैं हम भगवान से मिलना चाहते हैं पर हमको किसी की गर्ज नहीं है, ऐसे आदमी भूल में बैठे हैं, वो प्रभु को चाहते नहीं है। हमें किसी की गर्ज नहीं, यदि आप भगवान से मिलना चाहते हैं पर हमको किसी की गर्ज नहीं, ये क्या बोलता है? ये अहंकार बोलता है। इसलिए ऐसे लोग प्रभु को चाहते नहीं हैं। शरीर और रुपयों का जितना प्रेम है उतना भी हमारा भगवान में प्रेम नहीं है, तब हमारा प्रेम कहां और चाहना कहां? हम लोग तो लोभी की तरह हाय धन करते मरते हैं। इसी प्रकार हाय प्रभु हो प्रभु ऐसे करते हुए मरना चाहिए। हमारी इच्छा वैसी करनी नहीं हो रही है। हम लोगों की कैसी इच्छा होनी चाहिए? लगन लगन सब कोई कहे, लगन कहा वे सोय, नारायण ता लगन में तन मन दीजे खोय। जिस लगन में तन मन धन खो बैठते हैं वो होती है लगन। हम लोगों का मन विषयों की तरफ जाता है, प्रभु की तरफ जाता ही नहीं। भगवान के तत्व की बातें हो रही है और यदि वर्षा आ गई तो उठ के भागेंगे। हम लोगों का कहां गया प्रेम, कहां गई श्रद्धा? उठ के भगते क्यों हो? यदि यमदूत आ जाए तो कौन कह सकता है कि आए मैं अभी नहीं चलूंगा, जाके कह दो यमराज जी से। है किसी की हिम्मत? इसलिए अपने जोखिम को बेच देना चाहिए। राम नाम रूपी सिक्के में बेच देना चाहिए। ये जोखिम की बिकवाली है। कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन होए। भगवान को भजन है असली पूंजी है। भगवान के भजन के बिना लखपति कंगाल है। और जिसके पास भगवान की पूंजी है, दिखने में कंगाल है, वो लखपति से भी बढ़कर है। अब से ये नियम बना लो कि हम भगवान का भजन करेंगे, बस सब जोखिम आपकी बिक गई। दूसरे प्रकार की जोखिम बेचनी है, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस मंत्र की 3.5 करोड़ जप करने से भगवान के यहां जोखिम बिक जाती है, फिर कोई भय नहीं रहता है। सदा की जो जोखिम हम उठा रहे हैं, पर थोड़ी देर की वर्षा तथा आंधी हम नहीं सह सकते, मृत्यु रूप आंधी से भय नहीं करते, और इस तुच्छ आंधी से डरते हो और भगते हो, सत्संग को छोड़ने में साहस हो जाता है। हम लोगों का पैसे में जितना प्रेम है, उतना भी भगवान के नाम में नहीं है। दुख की स्थिति है, ये दुर्भाग्य है, बड़ा स्वभाव खराब बना रखा है। भगवान गीता अध्याय 8 श्लोक 7 में कहते हैं, मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। किसी भी काम में भगवान के स्मरण को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इसलिए हरेक काम करो और भगवान के स्मरण के साथ करते रहो। नारायण नारायण नारायण।